सकारात्मक जीवन शैली का आज ये चौथा सत्र, जिसमें राजयोग क्या है, राजयोग से कैसे हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, एक दिशा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय जब इस युग को कहते ही है तनाव, भय और क्रोध का युग है, जहां ये कमजोरियां हर एक के जीवन में घर कर गई है, और इन कमजोरियों से मुक्त होना चाहते भी है परंतु मुक्त नहीं हो पाते हैं, और यही कमजोरियां जीवन के अंदर एक प्रकार की असुरक्षा की महसूसता कराती है, कि जहां व्यक्ति को ये महसूस होने लगा है कि अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं, हर एक अपने होते हुए भी अपनी अपनी दुनिया में है, क्योंकि आज कोई भी संबंधों को भी लिया जाए तो ये संबंध भी स्वार्थ के आधार पर हो गए हैं, और इसलिए इन स्वार्थी संबंधों में भी कहीं पर भी अपनेपन से हम व्यवहार करने जाते हैं, लेकिन फिर भी जो प्यार निस्वार्थ भावना होनी चाहिए वो भावनाएं नहीं रही है, और इसलिए व्यक्ति भीतर से ही एक खोखलेपन का अनुभव कर रहा है। जैसे कि जीवन में कोई सार नहीं रहा, और इसलिए जब भी कोई छोटी छोटी बातें आती है तो ये छोटी छोटी बातों में भी व्यक्ति चिड़चिड़ापन में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, फिर कहने में तो यही कहेगा मेरे में और कोई कमजोरी नहीं है, बस गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो गुस्सा ये कमजोरी है ना, परंतु अगर उसको ये कहा जाए कि गुस्सा कमजोरी है तो इस क्रोध से मुक्त हो जाओ, उसको छोड़ दो, तो कहेगा इसके बिना काम कैसे चलेगा। अर्थात जो कमजोरी है, उस कमजोरी को अगर जीवन का आधार बना दिया, कर्म करने का आधार बना दिया, तो उससे आत्मा और कमजोर होगी या शक्तिशाली बनेगी। और इसलिए व्यक्ति के जीवन में दिन प्रतिदिन ये कमजोरियां बढ़ती जा रही है, उससे व्यक्ति को कोई प्राप्ति नहीं हो रही है। और यही कमजोरी भीतर से इंसान को खोखला बनाती जाती है। जिस प्रकार शरीर के अंदर एक कैंसर का सेल आ जाए तो वो सारे शक्ति के जो कण है उसको धीरे धीरे खाने लगता है और व्यक्ति को भीतर से कमजोर कर देता है। और एक समय आता है कि व्यक्ति चलने में भी असमर्थ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, ये सारी कमजोरियां ये कैंसर सेल है मन के लिए, जो मन की सारी शक्तियों को क्षीण कर रहा है और दिन प्रतिदिन आत्मा को भीतर से कमजोर ही बनाता जा रहा है। इसलिए व्यक्ति के अंदर जो विल पावर होना चाहिए, जो दृढ़ता की शक्ति आनी चाहिए, वो शक्ति नहीं है। ये तो समझते हैं कि हाँ, आत्मा में शक्ति नहीं है, शक्ति दाता परमात्मा है, और इसलिए भगवान के पास जाता है, और कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस शक्ति दे दो। देवियों के मंदिर में भी जब जाता है तो यही कहते हैं, हे माँ मुझे शक्ति दो। कौन सी शक्ति मांग रहे हैं? किसी से लड़ाई करने की नहीं, आत्मशक्ति चाहिए। जो आत्मशक्ति का अभाव बहुत खलता है अंदर में, और इसलिए ये शक्ति चाहिए। लेकिन वो कैसे प्राप्त होगी, उसकी विधि क्या है, उसका आधार क्या है, ये पता नहीं है। राजयोग हमें वो आधार प्रदान करता है कि ये शक्तियों को प्राप्त करने का कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, कोई लंबी चौड़ी विधि नहीं है, लेकिन सहज ही उसको जीवन के अंदर विकसित कर सकते हैं। वो राजयोग जिसको सर्वश्रेष्ठ योग बताया श्रीमद् भगवद गीता में भी, और यही कहा कि इससे तुम मन के ऊपर भी अधिकार प्राप्त कर सकते हो, इतना विल पावर आ जाता है, तो वो राजयोग क्या है और कैसे किया जाए, उसका आधार क्या है, विधि क्या है? गीता के अंदर जब महावाक्य सुनते हैं भगवान के, और हर पल पर अर्जुन को जो श्रीमत दी है उसमें कहीं भी भगवान ने ये नहीं कहा कि हे अर्जुन तुम अपने गृहस्थ को छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ, जंगल में चले जाओ, अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ दो, अपने कर्तव्य को छोड़ दो, कहा। भावार्थ ये है कि घर ग्रह में ही सब कर्तव्य जिम्मेवारियों को निभाते हुए ही राजयोग कर सकते हैं, और उसके लिए कैसे करना है सिर्फ एक विधि बताई है उसमें भी, कि ये एक मन की यात्रा है। मन को लगाना है, मन को अनेक कमजोरियों से धीरे धीरे निकालते हुए एक यात्रा पर ले चलना है। और ये मन की यात्रा है, क्योंकि मन के लिए कोई बंधन नहीं है। मन कहां भी चला जाता है, समय और सीमा उसके लिए कोई बंधन नहीं बन सकती है। यहां बैठे बैठे 25 साल पीछे भी चले जाते हैं, 5 साल आगे का भी प्लानिंग कर देंगे, यहां बैठे बैठे लंदन अमेरिका तक पहुंच जाएंगे। मन की यात्रा है। ठीक इसी प्रकार राजयोग में भी हम मन को ही एक आध्यात्मिक यात्रा पर ले चलते हैं, लेकिन ये यात्रा के 3 स्टेज है। पहली स्टेज है जिसको कहते हैं अंतर की यात्रा है, आत्मचिंतन करके भीतर जाना है, आत्मा की यथार्थ पहचान से आत्मचिंतन करते हुए आत्म की शक्तियों को विकसित करना है। इसलिए ये भीतर की यात्रा है, अंतर की यात्रा है। इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स, कि जहां चिंतन से धीरे धीरे हम वो गुणों को अपने अंदर विकसित करते हैं। जो पहले 2 दिनों में हमने देखा कि आत्मा का स्वधर्म क्या है, 7 गुण हैं, और वो 7 गुणों को रियलाइज करना है। इसलिए कहा जाता है नो थाई सेल्फ, रियलाइज थाई सेल्फ। क्योंकि जब तक आत्मा की वास्तविकता को रियलाइज नहीं किया, भीतर से वो स्वरूप नहीं बने, तब तक इस यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते। गीता में भी जब भगवान ने अर्जुन को यही कहा कि हे अर्जुन, देह के सर्व धर्म को छोड़ दो और आत्मनिश्चय करो स्वयं को। आत्मनिश्चय करना अर्थात क्या? देह के धर्म को छोड़ना माना क्या? देह के धर्म है अभिमान। सबसे बड़ा देह का धर्म अगर है तो वो है देह अभिमान। ये धर्म को छोड़ तुम, क्योंकि यही सभी दुख का कारण है। अभिमान से ही अनेक कमजोरियां जीवन में आई है। इसलिए ये देह के सर्व धर्म को छोड़कर स्वयं को आत्मनिश्चय करो। आत्मनिश्चय अर्थात स्वयं को आत्मा समझो कि मैं आत्मा कौन हूं। चिंतन करो अपनी वास्तविकता के विषय में, क्योंकि जैसे जैसे चिंतन करते जाते हैं वैसे वैसे हम भीतर रियलाइजेशन कर रहे हैं। बार बार जब ये प्रश्न अपने आप से पूछते हैं तो धीरे धीरे वो आवरण जो है वो हटने लगते हैं और आत्मा की वास्तविकता महसूस होने लगती है। वो 7 गुणों को धीरे धीरे महसूस करना कि मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध और पवित्र हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं और शक्ति स्वरूप हूं। जैसे जैसे इसको अंदर में चिंतन करते जाते हैं, धीरे धीरे वो प्रकंपन हम अपने भीतर उत्पन्न करते जाते हैं। जैसे बोलते हैं तो ये आवाज प्रकंपित होकर आप तक पहुंचता है, ठीक इसी प्रकार जो चिंतन हम करते हैं वो चिंतन भी प्रकंपित होता है और ये प्रकंपन अपने आसपास एक ऐसा क्षेत्र तैयार करता है जिसको कहते हैं एक डिवाइन ओरा, क्योंकि ये गुणों का भी एक ओरा है तो अवगुणों का भी ओरा है, कमजोरियों का भी ओरा है, जिसको साइंस भी अभी अनेक साधनों के माध्यम से देखने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे ऐसे कैमरा दुनिया के अंदर निकले हैं जो व्यक्ति के आसपास कौन सी एनर्जी का ओरा है वो स्पष्ट बता देते हैं कि नेगेटिव ओरा है या पॉजिटिव ओरा है। और देखा गया है कि जिसके अंदर नेगेटिव चिंतन अधिक है, कमजोरियों के जो वश है उसके आसपास भी एक नेगेटिव ओरा है। नेगेटिव ओरा अर्थात डार्क ओरा होता है जो एकदम रिपल्शन का कार्य करता है और इसलिए वो जब भी किसी के साथ भी संबंध में आना चाहते हैं लेकिन एक रिपल्शन क्रिएट होता है और इसलिए घर्षण बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव चिंतन है, जितना सकारात्मक विचार है उतना उसके आसपास भी लाइट कलर्स का ओरा दिखाई देता है और उस व्यक्ति के सानिध्य में भी थोड़ी क्षणों के लिए बैठ जाते हैं तो भी एक प्रकार का सुकून मिलता है। इसलिए तो कई बार महात्माओं के सानिध्य में लोग रहना चाहते हैं कि थोड़ी देर का भी ये संसर्ग मिल जाए तो भी कम से कम बाहर के नेगेटिव ओरा से, नेगेटिव वाइब्रेशन से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते। जितनी देर इस वातावरण के अंदर है उतना समय एक चार्ज्ड फीलिंग रहती है और सारे दिन भी अनुभव किया होगा इस चार्ज्ड फीलिंग का प्रभाव अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर, अपने कर्मों में, अपने संबंधों में, हर जगह ये ओरा का प्रभाव बना रहता है। सारा दिन इतना सुंदर बीतता है क्योंकि सुबह सुबह ही हम एक चार्ज्ड ओरा में, उस सानिध्य में अपने आप को ले गए तो धीरे धीरे वो विचारों में भी एक परिवर्तन महसूस करते हैं और यही चिंतन फिर सारा दिन जब रहता है या जितनी देर भी रहता है उतनी देर भी आप स्वयं में महसूस करते हैं कि एक शील्ड जैसे अपने आसपास क्रिएट करते हैं। कोई व्यक्ति आपके सामने आएंगे भी कोई नेगेटिव बातों को लेकर के तो भी यही कहते हैं, छोड़ो ना ये बातें, देखो वहां कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं। और फिर जो अच्छी बात लगी होती है वो जैसे जाकर के शेयर करते हैं तो वो ओरा क्रिएट हुआ है चिंतन से। तो ये थोड़े दिन न रहे क्योंकि इसका सुकून जो अनुभव हुआ है तो क्यों नहीं सदाकाल धीरे धीरे आत्मा की बैटरी को चार्ज करे और उसको सदाकाल मेंटेन करे। दूसरा स्टेप इस यात्रा का है कि ये परमधाम की यात्रा है, परमात्मा के सानिध्य में जाने की यात्रा है, वो भी मन की यात्रा है। क्योंकि कई बार कई लोगों का ये सवाल होता है कि भगवान को याद करने से क्या मिलेगा। अगर कोई कहता है शक्ति मिलती है, तो फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं, क्या प्रमाण है कि शक्ति मिली। और इस प्रकार के कई सवाल मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। इसलिए जब तक प्राप्ति का अनुभव न हो, प्राप्ति का पता न हो, तब तक वो चीज करने की इच्छा नहीं होती है। कई लोग समझते हैं कि ध्यान में जब बैठते हैं तो शायद परमात्मा का दर्शन होता होगा। दर्शन कैसे होता है और कैसे आत्मा में शक्ति भरती है, उसका प्रमाण क्या है, ये आज के सत्र में हम आपको बताएंगे। जैसे आज की दुनिया के अंदर एक रिचार्जेबल बैटरी आती है, उसको यूज करो तो डिस्चार्ज हो जाती है, फिर उसको चार्जर में रखना पड़ता है और अपने आप चार्ज नहीं हो जाती है, उसको कहीं कनेक्ट करना पड़ता है। और जब कनेक्शन करते हैं तो जो करंट पास हो रहा है वो करंट कोई देखने की चीज नहीं होती है। हाथ लगाओ तो पता चलता है इसमें करंट है, लेकिन उस करंट से वो बैटरी चार्ज हो रही है। अब ये चार्ज और डिस्चार्ज कैसे हो जाती है? सिंपल साइंटिफिक लॉजिक यही कहता है कि बैटरी के भीतर जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं, यूज करने से वो केमिकल कंपोनेंट्स अस्त व्यस्त हो जाते हैं, और जब अस्त व्यस्त हो जाते तो उसको कहते हैं डिस्चार्ज हो गए। जब उसको चार्जर में रखते हैं और जो करंट मिलती है उसका प्रमाण क्या कि वो केमिकल कंपोनेंट सुव्यवस्थित होने लगते हैं, रीऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। और जब संपूर्ण रीऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं तो कहेंगे रिचार्ज हो गए। ठीक इसी प्रकार आज आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई है। कैसे पता चलता है कि आत्मा में शक्ति नहीं है? क्या प्रमाण है? प्रैक्टिकल व्यवहार, कर्म, संबंधों में हर जगह दिखाई देता है कि छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, अपनी चीजें कहाँ रख देते हैं वो भी भूल जाते हैं, मेमोरी कम हो गई कहने लगते हैं, छोटी बातें कोई कह देते हैं सहन नहीं होती है, मन को एकाग्र करना चाहते एकाग्र नहीं होता है, दुविधा की स्थिति में फंसा रहता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो स्पष्ट सबूत देती है कि बैटरी डिस्चार्ज है। और फिर मेडिटेशन ये चार्जर है, लेकिन खाली शांति में बैठ जाने से चार्ज नहीं हो जाते। हमें भी अपने आप को उस स्रोत के साथ जोड़ना होगा। मन और बुद्धि ये दो पिन है, जो दो पिन लगानी होगी उस परमात्मा के साथ, और जो करंट मिलती है वो दिखाई नहीं देती है लेकिन महसूस कर सकते हैं। जो करंट मिलती है उससे क्या महसूसता आती है? धीरे धीरे सुव्यवस्थितता, कि जो कमजोरियों के कारण अस्त व्यस्त हो गई थी आत्मा की एनर्जी, वो सुव्यवस्थित होने लगती है। व्यक्ति के भीतर शांति, धैर्यता, ये शक्तियां बढ़ने लगती है। मन की एकाग्रता उसकी बढ़ने लगती है। दुविधा की स्थिति खत्म होती है। सहन शक्ति उसकी बढ़ने लगती है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन उसका कम होने लगता है। ये सुव्यवस्थितता कैसे आई? करंट मिली है। इतने साल अपने आप को कंट्रोल करना चाह, लेकिन जब भी कोई बात होती है बस तुरंत आवेश में आ जाते हैं। लेकिन राजयोग, मेडिटेशन करने से धीरे धीरे अपने अंदर वो शक्ति को महसूस करते हैं और अपने अंदर वो कंट्रोलिंग पावर अनायास अपने आप बढ़ने लगता है। अपनी मनोवृत्तियों को कर रहे हैं, अपने अंदर को कोई दमन नहीं कर रहा है, लेकिन सहज है। जब सहज उस वातावरण में रहते हुए अनेक बातें, अनेक परिस्थितियां आते हुए भी मन की स्थिति शांत रही, धैर्यता व्यक्ति के अंदर बढ़ी, तो ये कहां से बढ़ी? ये परिवर्तन जो उसके स्वभाव में दिखाई देने लगा, वो खुद को भी महसूस होता है और दूसरे भी उसको देख सकते हैं कि हाँ, इसके अंदर परिवर्तन आ रहा है। जब से इसने मेडिटेशन शुरू किया है, जब से उसने वहां जाना आरंभ किया है, धीरे धीरे उसके अंदर एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है और वो परिवर्तन एक सकारात्मक होता है, सही दिशा में होता है। ये परिवर्तन ऐसे नहीं आया है, वो करंट मिली है, परमात्मा से शक्ति, उस स्रोत से शक्ति प्राप्त हुआ है। ये प्रमाण है जो प्रत्यक्ष अपने जीवन में, कर्मों में, संबंधों में, मन की स्थिति में अनुभव कर सकते हैं। हर स्तर पर ये परिवर्तन अनुभव होता है। पहले जरा भी कुछ होता था, अधैर्य हो जाते थे और नकारात्मक विचार चलने लगते थे, लेकिन अब कुछ भी होता है फिर भी उसमें धैर्यता से कार्य कर सकते हैं। मेडिटेशन हमें ये नहीं कहता है कि जब परिस्थिति आती है तो उसमें कोई आप प्रैक्टिकल बनो ही नहीं। नहीं, प्रैक्टिकल बनते हुए धैर्यता से मन की स्थिति अपने काबू में होते हुए उसमें हम अच्छी तरह डील कर सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन खुद को भी महसूस होता है कि पहले तो छोटी छोटी बातों में आवेश में आ जाते थे, अब ये धैर्यता, ये शक्ति कहां से आई? मन की स्थिति शांत रहने लगी है, ये शक्ति कहां से आई? ये प्रमाण है। इसीलिए तो कई बार कई लोग कहते भी है कि जब से उसने वहां जाना शुरू किया है उसके अंदर एक परिवर्तन आ गया है। पता नहीं क्या हुआ, ये अचानक का परिवर्तन कैसे हुआ? ये कोई मन की वृत्तियों का दमन करके परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन यथार्थ समझ के बाद प्रैक्टिकल जब वो कार्य करता है, मेडिटेशन करता है, आध्यात्मिकता का अध्ययन करता है, उसी से उसके अंदर ये परिवर्तन आया है। अर्थात आत्मा की बैटरी चार्ज हुई है। और इस युग में अगर आत्मा की बैटरी को चार्ज नहीं किया तो आने वाले समय के साथ हम कदम में कदम मिला के चल नहीं पाएंगे। उस समय में व्यक्ति हारने का अनुभव करता है कि जैसे धीरे धीरे वो जीवन में हारने लगा है, उसके अंदर के शक्तियां क्षीण होने लगी है। और इसलिए कई बार हम देखते हैं कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तभी तो डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं कि 2010 तक अगर मनुष्य जीवन के अंदर ये जागृति न आए तो हर घर में एक डिप्रेशन वाला पेशेंट मिलेगा। आज जैसे अमेरिका जैसे भौतिक देशों में जहां भौतिकता इतनी विकसित होते हुए भी हर घर में एक डिप्रेशन वाला पेशेंट है, हर परिवार धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं, भारत में भी अगर ये आध्यात्मिक जागृति न आई तो यहां पर भी हर घर के अंदर एक डिप्रेशन वाला पेशेंट अवश्य मिलेगा। घर परिवार टूटने का अनुभव होगा, वो घरों में जो सुख शांति आनंद प्रेम का वाइब्रेशन होना चाहिए, जो प्रकंपन होने चाहिए, वो नहीं रहेगा। तो इसलिए ये यात्रा परम धाम की यात्रा है, परमात्मा से शक्ति को प्राप्त करने की यात्रा है। और तीसरी स्टेज इस यात्रा की है, इट्स अ जर्नी आउटवर्ड्स। तो पहली स्टेज जर्नी इनवर्ड्स, दूसरी स्टेज जर्नी अपवर्ड्स और तीसरी स्टेज राजयोग की है, इट्स अ जर्नी आउटवर्ड्स। कि जो मेडिटेशन में आत्मा के अंदर शक्ति को भरा है, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, आनंद की शक्ति, ज्ञान की शक्ति उसको भरा है, वो बाहर प्रवाहित होनी ही चाहिए। अगर वो प्रवाहित नहीं हो रही है तो जरूर कहीं ब्लॉकेज है, इस ब्लॉकेज को क्लियर करने की आवश्यकता है, क्योंकि अन्यथा ये प्रवाहित होती ही है। और तब देखते हैं कि वातावरण के अंदर भी परिवर्तन महसूस होता है। कई बार हम देखते हैं किसी किसी के घर में जाते हैं और ऐसा वातावरण होता है, भले कोई बातचीत न भी करे तो भी अच्छा लगता है। मंदिर में चले जाओ, कोई बातचीत न भी करता है लेकिन फिर भी उस वातावरण के अंदर बैठने का मन करता है। टाइम नहीं है ये बात अलग है, जो दौड़ करके बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन नहीं तो उस वातावरण में बैठने का मन करता है। किसी किसी के घर में जाओ, इतना नेगेटिव वाइब्रेशन होता है जो पता नहीं क्या है, लेकिन उस व्यक्ति को हम कहते हैं बाद में आते हैं करके निकल जाते हैं। एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आई कि तुरंत ही वहां से निकलने का मन करता है। और किसी किसी के घर में लगता है कितनी शांति है आपके घर में, मुख से भी निकल जाता है, क्योंकि वो वाइब्रेशन के अंदर प्रवाहित हुए हैं वो वैल्यूज, वो आत्मा की बैटरी जो चार्ज हुई वो प्रवाहित हुए प्रकंपन के रूप में फैलने लगे और घर के वातावरण को भी चार्ज कर देता है। और इसीलिए अगर ये चेंज खुद भी महसूस न हो, दूसरे में भी या वातावरण में भी उसको प्रवाहित नहीं करते हैं, तब तो आजकल के छोटे बच्चे भी माँ बाप से यही कहते हैं, वहां जाकर क्या सीख के आए, यही सीख के आए क्या? क्योंकि वो भी इतना तो समझते हैं कि जो वहां सुना, कम से कम थोड़ी देर के लिए वो वातावरण के अंदर प्रवाहित होना ही चाहिए। अगर वो शांति मेडिटेशन में बैठे, वो शांति की शक्ति को मैंने सचमुच महसूस किया, तो मेडिटेशन में से उठने के बाद झगड़ा करने को मन नहीं करता है। अगर मेडिटेशन में से उठने के बाद कोई तुरंत गुस्सा करता है तो क्या कहते, आपने मेडिटेशन क्या किया, पूछते हैं ना बच्चे भी, जवाब देना पड़ता है। उस वक्त और गुस्सा आता है, तुम चुप बैठ, यही कहते हैं ना, क्योंकि उसने हमारे पर अटैक किया है और उसका जवाब हमारे पास नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर भी गुस्सा करते हैं। तब वो अंदर ही अंदर बच्चे कभी आपस में हंसते हैं, क्या मेडिटेशन किया, यही किया क्या, वहां जाकर यही सीख के आते हैं क्या? क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद वो वाइब्रेशन में प्रवाहित होना ही चाहिए। ये है प्रूफ मेडिटेशन का कि उस मेडिटेशन में मैंने शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, आनंद की शक्ति उसको प्राप्त किया है। तो ये है कि मेरा मेडिटेशन सही है या नहीं इसका प्रमाण। सिंपल शब्द में अगर कहा जाए तो मेडिटेशन माना एक टेलीपैथिक कनेक्शन है। परमात्मा के साथ जो कनेक्शन जोड़ने की बात आई, ये कनेक्शन कैसे जोड़ते हैं? ये टेलीपैथिक कनेक्शन है। कई बार हमने जीवन में ये अनुभव किया होगा, किसी व्यक्ति को याद कर रहे हैं और अचानक वो व्यक्ति पहुंच जाता है या उसका फोन आ जाता है तो क्या कहते हैं, अरे अब भी आपको याद कर रहे थे। उस व्यक्ति से अगर पूछा जाए आपने कैसे फोन कर लिया तो क्या कहेंगे, बस ऐसे ही मन हुआ आपसे बात करें और फोन कर लिया। उस वक्त एक ऐसी खुशी होती है कि हमने उसको याद किया और तुरंत उसका एक प्रतिउत्तर मिला, खुशी होती है। लेकिन ये कैसे हुआ? तो जब वो दोनों व्यक्ति का मेंटल फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग हो जाता है तब ये अनुभव होता है। दोनों एक ही वेवलेंथ पर आ जाते हैं तब एक दूसरे के वाइब्रेशंस कैच हो जाते हैं। जो प्रकंपन है वो कैच होते हैं और उसने प्रतिउत्तर दिया कि फोन कर दिया। पहले के समय में जब ये मोबाइल्स नहीं थे, टेलीफोन्स नहीं थे, टेलीग्राम्स नहीं थे, कोई प्रकार का कम्युनिकेशन भौतिक रीति से नहीं था, तब व्यक्ति संदेश कैसे पहुंचाते थे? टेलीपैथिक कनेक्शन के माध्यम से। आदि शंकराचार्य जी की बात, उसी वक्त उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ करके पुकारा, हे प्रभु इसे बचा लो, मैं उसको सन्यास लेने देंगी। वो मगरमच्छ ने भी सहज उसका पैर छोड़ दिया और आदि शंकराचार्य जी बाहर आए, अपनी मां को याद दिलाया, देख तूने भगवान से वायदा कर दिया है कि तुम मुझे सन्यास लेने देंगी, अब सन्यास लेने दो। मां ने कहा ठीक है मैं तुझे सन्यास लेने देंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तो कहा जब मैं मरूं तो तेरी कांध पर जाऊं, इतनी मेरी इच्छा है। आदि शंकराचार्य जी ने वायदा दिया अपनी मां को और कहा जब तेरी अंतिम घड़ी आ जाए तुम सिर्फ मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा, कहां भी होऊंगा पहुंच जाऊंगा। और ये कहते हुए आदि शंकराचार्य जी ने सन्यास धारण कर लिया, घर से निकल चले। काफी साल हो गए, प्रचार करते करते काफी दूर चले गए। एक दिन जब वो ध्यान में बैठे थे कि अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उसकी मां उसको याद कर रही है और उसकी अंतिम घड़ी आ गई है, तुरंत ध्यान से उठे, चलने लगे और अपनी तपस्या के बल से मां के प्राणों को जैसे रोक के रखा। जैसे ही वहां पहुंचे मां को आवाज लगाई, देख मां मैं पहुंच गया हूं। मां ने आंखें खोली, देखा, संतुष्टि हुई और सहज प्राण तन से छोड़े। ये कौन सा कम्युनिकेशन था? इसको कहते हैं टेलीपैथिक कनेक्शन। और ये टेलीपैथिक कनेक्शन कभी कभी आज की दुनिया में भी अनुभव होता है। क्या आप कुछ सोच रहे होते हैं किसी व्यक्ति को कुछ कहने के लिए, और वो व्यक्ति सामने से आपके पास वही बात को लेकर के आते हैं? उस वक्त आपको लगता है इसको कैसे पता चला, कैसे मालूम हो गया कि मैं वही बात करने वाला था? ये मेंटल फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग जब हो जाता है तब ये अनुभव होता है। अगर इंसानों के साथ ये मेंटल फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग हो सकता है तो परमात्मा के साथ नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है। जब इंसान का प्रत्युत्तर मिलता है तो खुशी होती है। सोचो जब भगवान का प्रत्युत्तर मिले कितनी खुशी होगी कि अरे मैंने ये संकल्प किया और जैसे भगवान ने उसी बात का उत्तर दे दिया, कितनी खुशी होती है। तो ये टेलीपैथिक कनेक्शन भी संभव है आज की दुनिया के अंदर, जो कभी कभी हमें अनुभव होता है। सुबह के समय में जब एकदम रिलैक्स माइंड में आप बैठे हो और उस वक्त कुछ ऐसे विचार आपके मन के अंदर आ जाते हैं, ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर आ जाती है, ऐसे आभास होने लगते हैं, उसके बाद डोंट केयर करके आप कार्य व्यवहार में चल देते हैं, अपने कार्य मैं आगे बढ़ जाते, कार्य क्षेत्र पर चले जाते हैं, और सारे दिन में कभी शाम तक वो घटना घटती है, उस वक्त तुरंत याद आता है कि सुबह के समय मुझे आज ऐसा आभास हुआ था, लेकिन उसको समझ नहीं पाया कि क्या था, लेकिन अब पता चलता है कि यही बात। ये है परमात्मा के साथ का एक कम्युनिकेशन का नमूना। वो आपके साथ कुछ कम्युनिकेट करना चाहते थे, वो आपको कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आपने उसकी उस भाषा को समझा नहीं, इग्नोर कर लिया। जो बाद में रियलाइज होता है, ऐसा लगा जैसे कोई आवाज मुझे कुछ कह रहा था लेकिन समझ नहीं पाया। क्यों ये फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग नहीं हो पाता है? क्योंकि उसके लिए भी कुछ आधार चाहिए। या तो मुझे अपने मानसिक स्तर को ऊपर उठाना होगा उसके लेवल तक, या तो उसको मेरे लेवल तक आना होगा, क्योंकि तभी तो ट्यूनिंग होगा, तब तक ट्यूनिंग नहीं होगा। अब वो मेरे स्तर तक आए ये असंभव है, इसीलिए मुझे ही अपनी मानसिक स्तर को ऊंचा उठाना होगा उसके स्तर तक, और उसकी भाषा को समझने का प्रयत्न करना होगा। जैसे इंसान को जब याद करते हैं तो इंसान को याद करने के कुछ आधार होते हैं, सबको याद नहीं करते हैं। रास्ते चलते हमको हजारों व्यक्ति मिलते हैं, सबको कहाँ याद करते हैं? तो किनको याद करते हैं और किस आधार पर याद करते हैं? मनुष्य को याद करने के भी कुछ आधार है, और वो आधार है मुख्य रूप से चार आधार। सबसे पहला आधार है परिचय। जहां जिसके साथ परिचय होगा आप उसको याद करेंगे, जिसके साथ परिचय ही नहीं उसको कैसे याद करेंगे? दूसरा आधार है संबंध। जहां जिसके साथ थोड़ा बहुत संबंध होगा उसको याद करते हैं। तीसरा आधार है स्नेह, प्यार। स्नेहियों को याद करते हैं। और चौथा आधार है प्राप्ति। जहां से कुछ मिलने वाला होता है उसको याद करते हैं। ये चार आधार पर इंसानों की यादें होती है। और ये चार आधार पर चार प्रकार की यादें होती है। जहां सिर्फ परिचय होगा वहां याद कैसी होगी? वहां याद करना पड़ता है, मेहनत है। आज अपने घर में कोई प्रसंग हो और हमें हर परिचित व्यक्ति को बुलाना है तो एक एक को याद करेंगे, इसको भी बुलाना, इसको भी बुलाना, लिस्ट तैयार करेंगे ताकि कोई छूट न जाए। तो करना पड़ता है। परंतु जहां संबंध है वहां याद कैसी होती है? वहां याद सताती है। आज एक छोटा बच्चा है, कहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा हो और वहां से खबर आ जाए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मां को क्या होगा? क्या होगा? उसकी याद सताएगी। खाना बना रही होगी, याद किसकी होगी? बच्चे की। वो क्या खा रहा होगा, क्या कर रहा होगा, कैसा होगा, कौन ध्यान रखता होगा? अनेक विचार उसको सताते हैं। कभी कभी तो उस बच्चे की याद इतनी सताती है जो रात को नींद भी उड़ जाती है, सारी रात सो नहीं पाते, वही विचार चलते रहते हैं। मान लो कि दूसरे दिन उसका फोन भी आ जाए कि नहीं, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप चिंता नहीं करना, तो भी मां क्या कहती है? क्या कहती है? आवाज ठीक नहीं लग रहा है, ये मुझे खुश करने लिए ही कह रहा है ताकि मैं चिंता न करूं। आखिर उसको मन में आता है, एक बार जाकर मैं देख के आती हूं, तब जाके उसको संतुष्टि होती है। तो जहां संबंध है वहां याद कैसी है? सताने वाली। जहां स्नेह है, प्यार है, वहां याद कैसी होती है? समा जाते हैं, खो जाते हैं। आज जैसे कन्या है या कुमार है, जब तक उनको पता नहीं कि उनका भविष्य साथी कौन है, तब तक मन भटकता है, कौन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अनेक विचार आते हैं। लेकिन जिस दिन परिचय हो जाए, संबंध जुड़ जाए, उसके बाद उसको कहना पड़ता कि अब तुम अपने भविष्य साथी को प्यार से याद करो, कहना पड़ता है, सिखाना पड़ता है? नहीं, एकांत के पलों में बैठे होंगे और खो जाएंगे। कोई पास में से गुजर जाए, पूछो उसको यहां से कोई गया तो क्या कहते? मालूम नहीं। अरे आंखें खुली है, यहां बैठे हैं, इतना आवाज हो रहा था, इतना बड़ा व्यक्ति चला गया, दिखाई नहीं दिया, क्या कहते? पता नहीं, मेरा ध्यान नहीं था। और यहां जब कहते हैं कि आंखें खुली रखकर मेडिटेशन करो तो लोग क्या कहते हैं? ध्यान नहीं लगता है, इधर उधर की चीजें दिखाई देती है। और वहां व्यक्ति की याद में जब बैठे हैं तब कितना आवाज कोलाहल हो रहा था तो भी ध्यान लग गया। तो ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान अर्थात कि कोई भी चीज बाधा नहीं बन सकती है। ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल रही है, हिल रहे हैं, इतने बेचने वाले आवाज करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाजू में कोई आकर बैठ गया, पता ही नहीं चला, कोई परिचित होगा, कुछ बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। फिर जब वो ऐसे ऐसे करता है तब ध्यान टूटता है। अरे भाई कहाँ हो? कहते किसी की याद में खोया हुआ था, वहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, और यहां इतना वातावरण बनाया जा रहा है, कमेंट्री दी जा रही है, लेकिन फिर भी कोई आया क्या, गया क्या, कि तुरंत ध्यान इधर उधर चला गया हमारा। कोई आवाज हो रहा है, तुरंत ध्यान चला गया। क्यों? इंसान को याद करते समय हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता है, जिसके साथ स्नेह है, प्यार है, और परमात्मा को याद करने बैठे, इतने साधन सब कुछ होते हुए भी हमारा ध्यान नहीं लगता। कारण शायद स्नेह की कमी है, ईश्वर के साथ हमारा प्यार नहीं है। इसीलिए इंसान के साथ जहां प्यार है वहां कोई चीज डिस्टर्बेंस नहीं करती है, खुली आंख रख के बैठे हैं, कौन आया कौन गया पता ही नहीं चला, कोई बोल रहा है आवाज हो रहा है कुछ नहीं सुनाई दिया, क्योंकि प्यार है ना। लेकिन परमात्मा से प्यार नहीं है इसीलिए हर छोटी बात भी डिस्टर्ब करती है। कोई बात कर रहे हैं भगवान के सामने, मूर्ति के सामने बैठे होंगे, हाथ में माला होगी, पूजा कर रहे होंगे, लेकिन कौन बाहर बात कर रहा है, तुरंत ध्यान उधर चला जाता है, क्या बात कर रहे हैं, पूरी बात सुनाई दे रही है और ध्यान से सुनते, ध्यान किधर है, बैठे हैं भगवान के सामने, ध्यान कहाँ है। अब ऐसा ऐसी माला जपने का, ऐसी पूजा करने का कोई फायदा, कहां भी बैठो प्यार से उसको याद तो करो। तो जहां स्नेह है प्यार है वहां याद भी कैसी है, खो जाने वाली याद, समा जाने वाली याद, और जहां प्राप्ति है वहां याद कैसी होती है। आज एक बिजनेसमैन हो और उसको पता चले कि फलाने शहर से एक व्यक्ति आएगा, फलाने होटल में रुकने वाला है, लेकिन उसके साथ अगर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो माला माल हो सकते हैं, परंतु उसका पहुंचने का कोई ठिकाना नहीं क्योंकि बाय रोड निकला है, रात को देर से भी पहुंचे तो वो व्यापारी को नींद आएगी ना? आएगी, सारी रात भी उसको जागना पड़े तो जागेगा या कहेगा मैं तो सो जाता हूं, जाने दो, कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके साथ, नींद आएगी नहीं। प्राप्ति का पता है, माला माल हो जाएंगे तो नींद नहीं आती है, सारी रात भी बैठना पड़े तो बैठकर वो होटल वाले को फोन करता रहेगा, वो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, या तो लगेगा वहीं जाके रिसेप्शन में बैठ जाओ ताकि पहली अपॉइंटमेंट मुझे ही मिले। प्राप्ति का पता है ना, लेकिन एक बार बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, माला माल हो गए, उसके बाद कभी उसको याद करेंगे, मतलब ही नहीं। तो जहां प्राप्ति है वहां याद भी कैसी है, मतलब भरी याद, स्वार्थ भरी याद। आज ईश्वर के साथ हमारी याद कैसे है, कौन से प्रकार की है, करना पड़ता है, सताती है, समा जाते हैं, खो जाते हैं, या मतलब भरी है, स्वार्थ भरी है, क्या कहेंगे, कौन सी याद है। हंसी आ रही है ना, मतलब भरी है इसीलिए ना। बिजनेस करते हैं हम भी, भगवान के साथ एक बिजनेस डील करते हैं। एक कहानी याद आती है कि एक बार एक राजा था, तूफान तो शांत होना ही था, बड़ा जल्दी सौदा कर, जैसे ही ये सोचा कि फिर से तूफान शुरू हो गया, फिर नाविक ने कह दिया अरे भाई नाव मेरे कंट्रोल में नहीं है, भगवान को याद करो, अभी बहुत जोर का तूफान है। राजा ने फिर भगवान से प्रार्थना की और कहा हे प्रभु विश्वास करना, मैं सचमुच महल बेच दूंगा और वो पैसा गरीबों में बांट दूंगा। शायद दोबारा भगवान ने उस पर विश्वास कर लिया, तूफान शांत हो गया। जैसे ही तूफान शांत हुआ, सामने किनारे पहुंचे, महल को देखा, बहुत सुंदर भव्य महल बना हुआ था, उद्घाटन किया, और जैसे ही प्रजा को संबोधित करने गए वही राजा ने ऐलान कर दिया, ये महल मैं बेचना चाहता हूं। बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना सुंदर महल और एक दिन भी उसमें रहने का सुख नहीं लिया और बेचना चाहते, राजा को क्या हो गया? लेकिन कौन पूछे। फिर राजा ने ऐलान किया कि ये महल की कीमत है 100 रुपया। और आश्चर्य हुआ, 100 रुपये में महल, क्या हो गया राजा को? लेकिन इसके साथ एक शर्त है कि जो ये महल खरीदेगा उसको एक बिल्ली जरूर खरीदनी पड़ेगी और बिल्ली की कीमत है 5 लाख रुपया। बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा का आखिर मतलब क्या है, पता नहीं, समझ में नहीं आया। एक व्यक्ति वहीं खड़ा हुआ, ये 100 रुपया महल का, मैं महल खरीद लेता हूं, बिल्ली का पैसा बाद में देता हूं। अब राजा ने भगवान को जो वायदा किया था, महल को बेचकर वो पैसा गरीबों में बांट देना, 100 रुपया बांट दिया। बिल्ली का सौदा भगवान से थोड़ी किया था। ये है इंसान की मनोवृत्ति आज के युग के अंदर, जहां भगवान के साथ भी वो वफादारी नहीं है, सकारात्मकता नहीं है, तो इंसान के साथ तो क्या होगा, अपने आप से क्या होगा? इसलिए देखा जाता कि कभी कभी व्यक्ति अपने आप से भी वफादार नहीं है, और इसलिए वो मेंटल ट्यूनिंग जो होना चाहिए ईश्वर के साथ, वो ट्यूनिंग नहीं होता है, क्योंकि भावनाएं ही बदल चुकी है। इतना उसमें अंतर आ गया है कि कहीं पर भी ईश्वर के साथ की हमारी समीपता नहीं है। जो प्यार उत्पन्न हो हमें उसके लिए और उसको हमारे लिए, फिर भी उसको तो हमारे लिए होता है, लेकिन हमारा रिस्पांस ठीक नहीं है। इसलिए भगवान को भी कभी कभी अपने बच्चों पर आश्चर्य लगता होगा कि कैसे बच्चे हैं, सुबह से लेकर के भगवान हमको कितना याद करते हैं, कितना सारे दिन में हमारा ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। सुबह उठाता है कौन? उठाता है। कभी कभी आपको ट्रेन पकड़नी होती है, सुबह सुबह में फ्लाइट पकड़ना होता है, अलार्म लगा के सोएंगे, लेकिन अनुभव यह है कि अलार्म बजने से 5 मिनट पहले आपकी आंख खुल जाती है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने हिलाकर उठाया। किसने उठाया? वो उठाता है। वो उठाने के बाद सोचता है कि मेरा बच्चा मुझे याद करेगा, लेकिन उठने के बाद हम क्या करते हैं? रोज ही उठाता है वो, लेकिन उठने के बाद क्या करते हैं? 2 मिनट भी उसको याद करते हैं? नहीं, टाइम नहीं है। उठ करके सीधा बाहर आएंगे, न्यूज़पेपर आया कि नहीं आया, न्यूज़पेपर लेकर के बैठ जाते हैं। भगवान सोचता है चलो कोई बात नहीं, दुनिया की खबर भी पढ़ लेने दो, उसके बाद तो मेरा बेटा मुझे याद करेगा ही करेगा। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद स्नान पानी करने चले गए, भगवान सोचता है फ्रेश होकर के सबसे पहले ये मुझे ही याद करेगा। लेकिन नहा धोकर तैयार होने के बाद, ये नाश्ता तैयार है कि नहीं है, और नाश्ता करके सीधा चले अपने कार्य क्षेत्र पर, भगवान सोचता है कि चलो उसको जल्दी है, कार्य क्षेत्र पर पहुंच करके तो सबसे पहले मुझे याद करके ही वो अपना कार्य आरंभ करेगा। लेकिन कार्य क्षेत्र पर पहुंचने के बाद भी हम उसको याद करते हैं? टाइम नहीं है। फोन कॉल, लोगों से बातचीत करना आरंभ हो जाता है, भगवान सोचता है चलो उसको कारोबार करने दो, दोपहर को भोजन से पहले तो ये जरूर मुझे याद करके खाएगा। वो इंतजार ही करता रहता है हमारा कि कब मेरा बेटा मुझे याद करे। भोजन का समय होता है तब भी हम टेबल टॉक्स, दूसरे के साथ बैठ करके बातें करते खाना आरंभ कर देते हैं, भगवान को याद नहीं करते हैं। सोचता है भगवान भी चलो कोई बात नहीं, बेचारा इतना व्यस्त है जो कारोबार ही चल रहा है, शाम को तो जरूर ये मुझे याद करेगा ही करेगा। लेकिन शाम को भी कार्यक्षेत्र पर से आने के बाद और अनेक काम होते हैं, समाज के घर के सब काम में लग जाते हैं, और जैसे ही कभी बच्चों को बाहर ले जाना है, कभी कोई फंक्शन है, कोई की शादी है, कोई का कुछ है, कोई का कुछ है, वहां जाना है, भगवान सोचता है चलो कोई बात नहीं, दुनियादारी भी तो उसको निभानी है ना, निभा लेने दो, रात को तो जरूर ही आकर मुझे याद करेगा ही करेगा। लेकिन रात को भी आने के बाद क्या करते हैं, टीवी चालू कर देते हैं। भगवान सोचता है कोई बात नहीं, थोड़ा मनोरंजन भी कर लेने दो, उसके बाद तो सोने से पहले तो मुझे जरूर याद करेगा। लेकिन टीवी देखते देखते कहां वहीं लुढ़क गए, भगवान को याद कहां करते हैं, वो प्यार ही नहीं रहा जो उसके तरफ हमारा ध्यान भी जाए। सोचो आपका बेटा हो, आप उसको सुबह से उठाने के से लेकर के हर कार्य में उसको साथ देने के लिए तैयार हो, और वो आपके तरफ देखे तक नहीं, उस वक्त आपको कैसा लगता होगा, कैसा लगेगा? हम भी ईश्वर के बच्चे हैं ना, वो इतना प्यार करे हमें, सुबह उठाने से लेकर के हर मुसीबत के समय भी सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन हमारे पास उसके लिए दो मिनट का समय नहीं है, हम प्यार से उसके तरफ देखे तक नहीं, उसको कैसा लगेगा? और ये भी कोई कर्मों का हिसाब किताब नहीं है जो हम ईश्वर के साथ भी बांध रहे हैं। अगर हम ही ईश्वर के साथ ऐसा करेंगे, कल हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कर्मों की गुह्य गति है। इसलिए ईश्वर के साथ जितना प्यार भरा संबंध हमारा बढ़ेगा, ये देख करके हमारे बच्चों का भी हमसे संबंध उतना ही बढ़ेगा, और ईश्वर के तरफ उसको जितना मोड़ा तो वो भी अपने बच्चों को अपने तरफ ही मोड़ेगा। इसलिए भगवान से याद करो, भगवान को याद करो तो प्यार से याद करो। कई लोग सोचते हैं अरे हम भगवान को प्रार्थना करते हैं ना, क्या प्रार्थना और मेडिटेशन एक नहीं है क्या? रोज उसकी प्रार्थना करते हैं, सुबह उठ करके मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ करके भगवान को याद कर लेते हैं। प्रार्थना और मेडिटेशन में क्या अंतर है? प्रार्थना माना वन वे कम्युनिकेशन, सुबह उठे जो हमें बोलना है बोल दिया, हाथ जोड़ा, सिर झुकाया, बाहर आ गए, खड़े नहीं रहते हैं, वो भी मुझे कुछ कह रहा है, ये सुनने का टाइम नहीं है, वो भी मुझे कुछ कह रहा है। मेडिटेशन माना टू वे कम्युनिकेशन, कुछ हम बात करें, फिर मन को शांत कर दो, रिलैक्स कर दो, सुनो वो भी मुझे कुछ कह रहा है। वो क्या कह रहा है? ये अभ्यास को बढ़ाओ, सुनाई देगा, उसकी हर बात भी सुनाई देगी, वो भी हमें कुछ कह रहा है। ये है मेडिटेशन। एक कहानी याद आती है कि एक बार एक ग्वाल बाल था, गैया चराने वाला, सारी गायों को लेकर के रोज जंगल में जाता था, एक खुला मैदान आता था वहां छोड़ देता था और एक झाड़ के नीचे बैठ जाता था। रोज उसके मन के अंदर अलग अलग विचार आते थे। एक दिन उसके मन में विचार आया कि जैसे मैंने गायों को छोड़ दिया, सब अपना अपना घास खा रही है और मैं अभी शांति से इस झाड़ के नीचे बैठा हूं, ऐसे ईश्वर ने भी हमें इस संसार में छोड़ दिया। सब अपना अपना कर्म कर रहा है, घास खा रहा है, अब वो भी मेरी तरह कहीं शांति से बैठा ही होगा। अनपढ़ था, उसका लेवल ऑफ थिंकिंग उतना ही था, वो अपने तरीके से सोच रहा था ईश्वर के बारे में। फिर मन ही मन ईश्वर से बात करने लगा कि हे प्रभु, तू भी कहीं अकेला बैठा होगा, मैं भी यहाँ अकेला बैठा हूँ। मुझे तो पता नहीं है तू कहाँ है, लेकिन तुझे तो पता है ना मैं यहाँ बैठा हूँ। क्यों नहीं थोड़ी देर के लिए तुम आ जाओ, बैठेंगे, बातें करेंगे, गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। अकेला अकेला बड़बड़ा रहा था, ईश्वर के साथ बातें कर रहा था। उतने में वहां से एक पंडित जी गुजर रहे थे। देखा ये लड़का अकेला अकेला बड़बड़ा रहा है, पूछा, ये लड़का किससे बात कर रहा है? लड़के ने कहा, किसी से नहीं। अरे तू बड़बड़ा रहा है, किससे बात कर रहा है? लड़के ने कहा, बस किसी से नहीं, भगवान से बातें कर रहा था। क्या बातें कर रहा था? पूछा। लड़के ने अपने मनोभाव व्यक्त कर दिए कि बस उसको कह रहा था, थोड़ी देर के लिए तू आ जा, बैठेंगे, बातें करेंगे, टाइम पास करेंगे, गपशप मारेंगे। पंडित जी को बड़ा गुस्सा आ गया, ये कोई तरीका है भगवान से बात करने का? ये कोई सभ्यता है? भगवान कौन है? ऊंचे से ऊंची हस्ती है, वो कोई टाइम पास करने लिए है क्या? बड़ा गुस्सा करने लगा। लड़के ने पंडित जी से कहा, पंडित जी मुझे तो और कुछ नहीं आता है, मैं तो रोज ऐसी बातें करता हूँ। पंडित जी ने कहा, ऐसी बातें नहीं करते भगवान के साथ, वो इतनी ऊंची से ऊंची हस्ती और तुम ऐसी बातें करता है, पाप लगेगा तुझे। फिर वो लड़के ने कहा, पंडित जी फिर मुझे सिखाओ कैसे उससे बात करना चाहिए, क्योंकि मैं जंगल में अकेला होता हूँ रोज, किससे बात करूं, इसीलिए मैं ऐसी बातें करता, आप मुझे सिखाओ कैसे उससे बात करना चाहिए। पंडित जी ने कहा, बैठ, मैं सिखाता हूं। बिठाया उसको और संस्कृत का एक श्लोक पक्का कराना चालू किया। अब वो अनपढ़ लड़का, उसको संस्कृत कहाँ आती, लेकिन एक एक शब्द रटाते गए, रटाते गए, रटाते गए, 2 घंटे लगे पूरे श्लोक को रटने में। पंडित जी ने इतनी धैर्यता रखी, एक एक शब्द पक्का कराते गए, उच्चारण पक्का कराते गए। 2 घंटे के बाद जब उसने श्लोक को रट लिया, तब पंडित जी ने कहा, ये सभ्यता है भगवान को याद करने की, ऐसे रोज याद करना। लड़के ने कहा, बिल्कुल पक्का कर लिया, अब रोज ऐसे ही याद करूंगा। पंडित जी वहां से चले, भगवान के मंदिर में पहुंचकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आज मैंने इतना अच्छा काम किया, एक अनपढ़ बालक को तेरे साथ बात करने की सभ्यता सिखाई। उतने में एक आकाशवाणी हुई, तूने जो किया ना वो ठीक नहीं किया। कहा, ठीक नहीं किया, क्यों? कहा, वो लड़का रोज जंगल में आता था, रोज कभी क्या बात करता था, कभी क्या बात करता था, कभी तो ऐसी बातें करता था जो मुझे भी हंसी आ जाती थी। मैं रोज इसका इंतजार करता रहता था कि आज ये मेरे साथ क्या बात करेगा, लेकिन आज से तू जो उसको रटा के आया है ना, वही रटी रटाई बातें रोज बोलता रहेगा, जिसका भाव भी नहीं समझता, न उस भावना में स्थित होकर के बोलेगा। आज से तूने एक बच्चे को मेरे से दूर कर दिया, ये अच्छा नहीं किया। और वो रटी रटाई चीज सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आज से तुमने एक बच्चे को दूर कर दिया, कहीं हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे? रोज वही रटी रटाई प्रार्थना बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे, रोज मंदिर में जाने का वही रटी रटाई प्रार्थना या श्लोक या जो कुछ भी है हमने निश्चित किया, या जो मंत्र है निश्चित किया है वो बोल देने का और बाहर आ जाने का, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे? और अगर ऐसा ही कर रहे हैं कि रोज वही का वही मंत्र या प्रार्थना बोले जा रहे हैं, तो भगवान को उसको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उससे हम भगवान के समीप नहीं होते हैं, दूर होते हैं। इसलिए दिल से बातें करो उसके साथ, जो मन में आए वो बातें करो उसके साथ, लेकिन ये बातें भी कैसा करना है कैसे करना चाहिए ताकि मन लग जाए उसके अंदर और बहुत सुंदर एक समीपता का अनुभव हो, ये कल के सत्र में हम आगे आपको सुनाएंगे कि भगवान के साथ कैसे बातें करनी चाहिए और कैसे उसके प्यार को अनुभव करना चाहिए। ये कल सुबह का सत्र होगा, कैसे कैसे हम संबंध जोड़ सकते हैं और कैसे कैसे उसके साथ बातें कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी क्षण के लिए हम बैठेंगे उसकी याद में, थोड़ी क्षणों के लिए। जैसे ही मन को परमात्मा के सानिध्य की ओर ले चलते हैं, कोई न कोई संबंध उसके साथ जोड़े और संबंध जोड़ करके उसको प्यार से याद करें और उस परमात्म प्यार का अनुभव करते हैं। कुछ क्षणों के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। सर्व इंद्रियों को भीतर की ओर एकाग्र करते हैं, अंतरचक्षु से स्वयं को देखते हैं, भ्रुकुटी की मध्य में एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में, मैं आत्मा शरीर की सर्व कर्मेंद्रिय की मालिक हूं, अधिकारी हूं। कुछ क्षण के लिए देह से भिन्न मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि से परमात्मा के सानिध्य में जा रही हूं। पांच तत्व की दुनिया से दूर, सूर्य चंद्र तारागण से भी बाहर, परम धाम में जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश है, जहां मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में प्रकाश पुंज के रूप में स्थित हूं। पिता परमात्मा के सानिध्य में जाती हूं, जो परमात्मा मेरे माता पिता है। मैं आत्मा उस माता पिता से दिव्य प्यार को, वरदान को अनुभव कर रही हूं। वही मेरे परम शिक्षक भी है, परम सतगुरु भी है, खुदा दोस्त भी है, जीवन साथी भी है। सर्व संबंधों का सुख उस परमात्मा से मैं प्राप्त कर रही हूं। मैं आत्मा स्वयं को धन्य धन्य महसूस करती हूँ, जो परमात्म प्यार के पात्र आत्मा बन गए। कुछ क्षण के लिए मन को उस परमात्म प्यार में समा लेती है, मन को उस परमात्म प्यार में समा लेती हूँ, खो जाती हूँ। प्यार को, परमात्म प्यार को स्वयं में अनुभव करते हुए मैं अपने मन और बुद्धि को वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर, शरीर में रुकुटे के मध्य में स्थित करते हैं। ओम शांति शांति।